कल्प के अंत में हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि कुमारी जीवन प्रदान हुआ है। उनसे भी श्रेष्ठ भाग्य संगम युग का है जो हम ब्रह्मा कुमारी जीवन को अपनाया हुआ है। जब फीचर्स की बात आती है तो दुनिया के अंदर आप सभी जानते हैं कि अपने चेहरे को ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। दुनिया के अंदर जो मिस वर्ल्ड मिस इंडिया जो अवार्ड प्राप्त करते हैं वो चेहरे के आधार से, लेकिन उनसे भी बड़ा भाग्य हम आत्माओं का है कि भगवान ने स्वयं हमें चुना है। ये कुमारी जीवन एक वरदानी जीवन है। चेहरे में हमारी दृष्टि के द्वारा हम कैसे सेवा कर सकते हैं, जैसे आप कोई मूर्ति को देखते हैं, कोई देवी के चित्र को देखते हो तो उसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले नजर हमारी कहाँ जाती है? उसके नयन में। कितना भी अच्छा चेहरा हो लेकिन अगर आंखें ठीक नहीं बनी हुई हो तो वो चेहरा इतना अच्छा नहीं लगता है। तो हमें भी अपनी दृष्टि को बहुत बहुत पावन बनाना है, हमारी दृष्टि को सुखदायी बनाना है। जैसे देवियों के चित्र में दया प्रेम करुणा दिखाई देती है, शक्ति दिखाई देती है, तो अभी हम अपनी दृष्टि में भी इस प्रकार से दया प्रेम करुणा भरते जाएं। और हमारे पास बहुत अच्छा सहज साधन है, बाबा की याद। बाबा की याद से हम अपने दृष्टि को अपने नयन को पावन बनाते हैं। जैसे देवताओं के एक एक अंग की महिमा जो करते हैं वो कमल के साथ करते हैं, नयन कमल, मुख कमल, कर कमल, पद्म कमल, तो ऐसे ही हमें अपने आंखों को कमल समान बनाना है। कैसी भी आत्मा हमारे सामने आ जाए लेकिन हमारी दृष्टि में वो ताकत है कि वो आत्मा हमें देखते ही उसके विचार बदल जाए। तो कैसे हम पावन बने, ये बहुत अच्छे साधन हमारे पास है बाबा की याद। दूसरा है मुख, क्योंकि ये मुख हमें किस लिए मिला है। एक बहुत अच्छा संदेश आया था मोबाइल के अंदर कि दुकान को लॉक लगा हुआ है लेकिन जब दुकान खुलती है तो पता चलता है कि ये दुकान कोयले की है या सोने की है। वैसे ही हमारा मुख भी जब खुलता है तो हम अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज भरी हुई है, कैसे बोल हम बोलते हैं कि जिस बोल के आधार से हम अपनी वैल्यू को बता सकते हैं, हम अपने बोलों के द्वारा पहचाने जाते हैं। अगर हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो सबसे अच्छा अगर साधन है तो वो है मौन, और मौन की भाषा बहुत पावरफुल है। जितना आप मौन रहेंगे, जितना आप साइलेंस में रहेंगे, आप बहुत कुछ बोल देंगे, क्योंकि आप हरेक जानते हैं कि हमारे बोल के आधार से हम अपना वर्तमान भी खराब करते हैं और हमारा भविष्य भी खराब होता है। अगर हमें अपना भविष्य सिक्योर रखना है तो वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना बहुत आवश्यक है। तो हमारे बोल के ऊपर मैं कहूंगी संयम बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन संयम पूर्वक बोलना बहुत मुश्किल है। तो वाणी के आधार से हम अपनी पहचान को बता सकते हैं। आप हर एक जानते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं उसके थोड़े बोल भी सत्वचन महाराज के रूप में गाया जाता है। बाबा ने कुछ वर्ष पहले हमें कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो ये स्लोगन दिया था। और मैं कहूंगी कि हमारा मुख अगर मुस्कुराता हुआ है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत सेवा करता है। आप किसी को भी देखो, कोई टेंशन में है, कोई दुखी है, कोई अशांत है, तो उनके चेहरे से आप बता सकते हैं ना कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो मेरा चेहरा भी यदि ऐसा हो, मुरझाया हुआ, तो कोई मेरे साथ बात करेगा? नहीं। मेरे कोई फ्रेंड्स बनेंगे? नहीं। तो हम हर एक अनुभवी हैं कि हमारे चेहरे से हम किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। तीसरी बात है हमारे कान, और हमारे कान के अंदर हमें किस लिए मिले हुए हैं। आप हर एक जानते हैं कि महारथी के कान में यदि एक चींटी, छोटी सी चींटी भी घुस जाती है तो वो महारथी मूर्छित हो जाता है। हमने कितनी अच्छी अवस्था बनाई है, लेकिन किसी ने कुछ मेरे कान में कह दिया। एक छोटी सी बात अगर मेरे कान में चली गई, मेरी बनाई हुई स्थिति तुरंत नीचे उतर आएगी। स्थिति बनाने में बहुत मेहनत लगती है, स्थिति बिगाड़ने में कितना समय लगता है? एक सेकंड। व्यर्थ की बातें यदि कान में चली जाती हैं, तो हम अपनी स्थिति को, हमारे संकल्पों को बहुत व्यर्थ चलाने के प्रतिनिमित बन जाते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि कान से क्या सुनो, अच्छी बातें सुनो। अगर हम अच्छी बातें करना जानते हैं तो अच्छी बातें सुनना भी जानते हैं, तो कान की भी बहुत संभाल करनी है। और चेहरे में और क्या आता है? नाक। नाक किसका प्रतीक है? इज्जत, प्रेस्टीज का प्रतीक है ना। कोई अगर फैमिली के अंदर कोई ऐसा काम करके आते हैं तो क्या कहते हैं कि इसने तो हमारी इज्जत को पानी में मिला दिया, धूल में मिला दिया। अगर हमें भी अपनी इज्जत को बनाए रखना है तो हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। हम ऐसा कोई कर्म नहीं करें कि जिससे मुझे नीचा मुंह करना पड़े। तो इज्जत से जीना बहुत जरूरी है। और संगम युग में हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। हम हरेक बाबा के डायमंड्स हैं, और डायमंड की वैल्यू कब है? जब इसके ऊपर एक भी दाग नहीं लगा हुआ हो। कुमारी जीवन पवित्र जीवन है, और ये जीवन को, आज जीवन पवित्र बनाए रखना हमारे हाथ में है। हम अपने चेकिंग करें कि मेरे में कोई ऐसे संस्कार तो नहीं है कि जिसके कारण मैं स्वयं भी डिस्टर्ब होती हूं और दूसरे को भी डिस्टर्ब करती हूं। मेरे में ईर्ष्या के संस्कार हैं, या कोई देहधारी के प्रति आकर्षण है, या तो खाने पीने का शौक है, पहनने का शौक है, घूमने का शौक है, ये सब यदि हमारे जीवन में है तो हम अपनी वैल्यू को कम करते जाते हैं। कौन सा शौक होना चाहिए? हमारे में वो शक्ति होनी चाहिए कि कैसा भी व्यक्ति हमारे सामने आवे, गंदे से गंदा व्यक्ति भी हमारे सामने आवे, हम उसकी दृष्टि को, उसकी वृत्ति को परिवर्तन कर दें। हमारे चेहरे से देखते ही उसको लगे कि ये शिव शक्ति है, ये कोई शक्ति स्वरूप है। हमारे मन के अंदर जैसे भी भाव चलते हैं, और हम कहने में क्या आता है, हमारे मन का दर्पण हमारा चेहरा है। तो मन के अंदर यदि हम श्रेष्ठ संकल्पों की ही रचना करते रहते हैं, तो हम किसी को भी अपने तरफ आकर्षित नहीं होने देंगे। जैसे बाबा साकार मुरली में कई बार ये बात कहते हैं कि एक बहन कुएं पर पानी भरने गई थी, और उसने अपना घड़ा तो भर लिया, लेकिन घड़ा भरने के बाद वो उठाए कैसे? तो एक घोड़े सवार वहां से पसार हो रहा था, उसने देखा कि ये इतना बड़ा घड़ा वो अपने माथे पर रखेगी कैसे। तो उसको आया कि मैं थोड़ी मदद कर दूं, और जब वो मदद करने चाहता है तो वो बहन कहती है कि मैं तेरी मदद तो लूं, लेकिन एक शर्त पे, अंग अंग से ना लगे। तो वो व्यक्ति विचार में पड़ गया, लेकिन मदद करने की भावना थी, तो उसने कहा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अंग अंग से ना लगे। ऐसे ही हम भी यदि बाबा के बच्चे अनटच्ड ब्रह्मा कुमारी बने, कि ना मुझे किसी के ऊपर, मैं किसी के ऊपर प्रभावित ना हो, ना मेरे ऊपर कोई प्रभावित होवे, तो हमारी ये ब्रह्मा कुमारी जीवन सार्थक है। कोई भी देहधारी के प्रति यदि हमारा आकर्षण होता है, तो हम ये जीवन को श्रापित कर देते हैं। तो हमारी जीवन बहुत अमूल्य है, इस जीवन को हम जितना मूल्यवान बनाना चाहे उतना मूल्यवान हम बना सकते हैं। हमारा फ्यूचर किस आधार पर बनेगा? आप सभी जानते हैं कि मदर टेरेसा को जब नोबेल प्राइज मिली थी, किस आधार से मिली? उसके कर्तव्य के आधार से, उसकी विशेषता के आधार से उसको ये अवार्ड मिला था। तो हम आत्माएं भी, हमारी अंदर की जो ब्यूटी है, आंतरिक ब्यूटी, अंदर की सुंदरता को हम बनाए रखें, हमारे जीवन की धारणाओं को हम बनाए रखेंगे, तो हम ये जीवन खुशी खुशी से जिएंगे। ऐसे नहीं होता है कि जीवन में कभी परीक्षाएं आएगी ही नहीं, परीक्षाएं आएगी। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, परीक्षा आती रहेगी, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा एक शस्त्र है, जिस शस्त्र को यदि हमने जीवन में यूज किया है, तो वो परीक्षा में हम पास होते हैं, और वो शस्त्र है बाबा का ज्ञान। और ये ज्ञान इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है, कि ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में यूज करते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है। ज्ञान को यूज करना, ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, सुनने के बाद प्रैक्टिकल करना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं कई बार ये बात कहती हूं कि हमारी दादी हैं, दादी जान की सिर्फ 3 क्लास पढ़ी हुई है, लेकिन वो यूएन में भी भाषण कर सकती हैं, 1 लाख की सभा में भी भाषण कर सकती हैं, किसी के भी दिल को जीत सकती हैं। उसका आधार क्या है? बाबा की इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा ज्ञान कि जिस ज्ञान को इसने अपने जीवन में प्रैक्टिकल डाला है। गीता पढ़ते हैं लेकिन जीवन यदि गीता नहीं बना है तो गीता पढ़ने से क्या फायदा। मुरली पढ़ते हैं लेकिन अगर मुरली हमारे जीवन में नहीं आई है तो क्या फायदा। तो इसीलिए ज्ञान माना समझ को यूज करना सारे दिन में बहुत जरूरी है। हम अपनी समझ को यूज करें और जितना जितना आप ज्ञान को यूज करते जाएंगे हर परिस्थिति में आप पास होते जाएंगे। एक बार मैंने दादी को बोला कि दादी हम जब भी आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर के आते हैं आप हमेशा ज्ञान ही सुनाते हो। ज्ञान कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या? दादी कहती है ज्ञान ही एक सॉल्यूशन है। अगर अपने जीवन में ज्ञान नहीं यूज करेंगी तो जो संस्कार हमारे हैं छिपे हुए वो संस्कार हमें यूज करेंगे। क्योंकि आज हरेक के पास छिपे हुए संस्कार जरूर हैं और वो छिपे हुए संस्कार कभी न कभी प्रकट हो जाते हैं क्योंकि हरेक के पास अपना कंफर्ट जोन बना हुआ होता है और कभी भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं, है ना। तो हम अपने संस्कारों को पालते रहते हैं। जब हम ज्ञान को यूज करेंगे तो संस्कारों को मार्जिन नहीं होगी हमें यूज करने की। तो इसीलिए ज्ञान को यूज करेंगे तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। जैसे खुशी हमारा एक आभूषण है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खुशी चली जाती है और खुशी जाने का कारण क्या होता है, हम कहेंगे कि विस्मृति। हम जब अपनी स्मृति से नीचे उतर आते हैं तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। जैसे हम कहीं मीटिंग में गए और हम अपने घर की चाबी लेकर के गए और जब वापस लौटे तब वो चाबी हम अपनी मीटिंग के टेबल पर ही भुलाए। सारा संसार हमने ढूंढ लिया लेकिन चाबी मिली नहीं। क्यों? क्योंकि हम भूल गए कि कहां रखी थी। तो हम क्या कहे, चाबी गुम हो गई या हमारी स्मृति खो गई, क्या कहेंगे? चाबी तो वहीं पड़ी है। यह चाबी तो कितनी वफादार है कि जहां रखी थी वहीं पड़ी है लेकिन हमारी स्मृति खो जाती है। तो ऐसे ही होता है कि हमारी खुशी हम सारी दुनिया में ढूंढते हैं। हम समझते हैं कि अच्छा खाने से हमें खुशी प्राप्त होगी, अच्छे कपड़े पहनने से हमें खुशी प्राप्त होगी, अच्छे मकान में रहने से हमें खुशी प्राप्त होगी, लेकिन वो सब टेम्पररी होता है। हाँ, जब एक बार देवताओं की आपस में मीटिंग हुई, उन्होंने सोचा कि चलो हम ऐसी एक चीज को छिपा करके रखे जो मनुष्य वहां ढूंढ नहीं सके। तो उन्होंने सोचा कि खुशी को हम छिपाएं। एक देवता ने कहा कि हम सागर के तले में छिपा के रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, फिर आपस में डिस्कशन हुआ कि इंसान तो सागर के तले में भी पहुंच जाता है। किसी देवता ने कहा कि हम हिमालय की चोटी पर रखते हैं, तो कहते हैं कि इंसान चांद पर भी पहुंच जाता है तो हिमालय पर भी पहुंच जाएगा। फिर तीसरे देवता ने कहा कि हम ऐसे करें कि मनुष्य के अंदर ही, भीतर में ही हम उसको छिपाएं, वो कहीं भी खोज नहीं पाएगा। तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं कि बाबा ने हमें बता दिया है कि वो स्थान कहाँ है, अंदर में है। अगर मुझे मेरी खुशी को बनाए रखना है तो मेरे पास कौन सा साधन है, मेरे संकल्प। मेरे संकल्प जिस प्रकार से चलेंगे उसी प्रकार से मैं अनुभव में आती हूँ। अगर खुशी के संकल्प को क्रिएट करेंगे तो आप खुशी का अनुभव करेंगे, दुख के संकल्प को क्रिएट करेंगे तो आप दुख का अनुभव करते हैं। तो मेरे हाथ में है कि मुझे किस प्रकार के संकल्प को बनाए रखना है। आप बाहरी वस्त्रों के ऊपर बहुत अटेंशन देते हैं, हम क्वालिटी चेक करते हैं, खाने के लिए क्वालिटी चेक करते हैं, पहनने के लिए क्वालिटी चेक करते हैं। कभी अपने अपने संकल्पों की क्वालिटी को चेक किया है कि मेरे संकल्प किस क्वालिटी के हैं? क्योंकि दुनिया के अंदर भी ये बात मानते हैं कि जिसने अपना नाम कमाया हुआ होता है ना, कोई भी ब्रांडेड चीज होती है, उसकी मार्केट के अंदर एक प्रेस्टीज बन जाती है। अगर बाय मिस्टेक इस बार प्रोडक्शन रॉन्ग हुआ तो वह कभी भी मार्केट में नहीं लाएंगे, बेचेंगे नहीं, उसकी दुकान कोई अलग होगी, क्योंकि वो अपनी प्रेस्टीज को खराब नहीं करना चाहते हैं। तो हमें भी अपने संकल्पों की क्वालिटी को बनाए रखना है। अपने आप को हम चेक करें कि यदि मेरे संकल्प मेरी क्वालिटी से नीचे उतर आते हैं तो हम उसको क्रिएट न करें। हमेशा ही हम अच्छे के अच्छे विचारों को क्रिएट करते जाएंगे और संकल्पों के आधार से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। हमारा फ्यूचर का आधार भी वर्तमान है। बाबा ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने सेंटर्स खोले हैं, तुमने कितने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, तुमने कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भाषण किए हैं, लेकिन अंत में हमें जो मार्क्स मिलेगी वो अपनी स्थिति के आधार से मिलेगी। तो हमें अपने संकल्पों के आधार से अपनी स्थिति को जितना ऊंचा उठाने चाहे उतना ऊंचा हम उठा सकते हैं। और संकल्प के आधार से ही हम व्यवहार में भी आते हैं। आज यदि मेरा मन ठीक नहीं है तो मैं किसी के भी व्यवहार में आऊंगी तो डिस्टर्ब मन क्या करेगा? दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। अगर मेरा मन डिस्टर्ब है तो मेरी वाणी कैसी होगी? मीठी होगी या कड़वी होगी? हाँ, क्या कहेंगे? सबका अनुभव क्या है? अगर मेरा मन डिस्टर्ब है तो मेरी वाणी भी कड़वी ही होगी। इसीलिए फाउंडेशन क्या है? हमारा संकल्प, हमारा मन। इसीलिए भगवान ने भी कहा है, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया है उसने जगत को जीत लिया है। हमारा भविष्य वर्तमान के जीवन से दिखाई पड़े। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे बाबा से पूछें कि बाबा मैं भविष्य में क्या बनूंगा। हम हरेक वर्तमान के आधार से जान सकते हैं कि हम भविष्य में क्या बन सकते हैं, लेकिन इतनी पूछने की हिम्मत भी तो चाहिए ना कि हम क्या बनेंगे। तो हम जानते हैं कि संगठन में रहते हुए, चाहे आप घर में रहते हो, कई बहनें होंगी जो नौकरी करती हैं, कई हैं जो स्कूल में पढ़ती होंगी, कई बहनें कॉलेज में पढ़ती होंगी, तो आप हरेक जानते हैं कि संगठन में रहते हुए भी हम कुछ अलग दिखाई देते हैं। हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से हम दूसरों से भिन्न हैं। अगर हम भी दुनियावी लोगों की तरह हैं तो उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। अभी मई मास में मैं मॉरिशस जा रही थी, तो इमिग्रेशन की लाइन में जब मैं खड़ी थी तो मैं रॉन्ग लाइन में खड़ी थी। फिर जब मेरा नंबर आया तब मैंने पढ़ा वहां कि ये बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की लाइन है। मैंने आगे जाकर के वो ऑफिसर को कहा, आई एम सॉरी, आई एम इन द रॉन्ग लाइन। कहता है, डोंट वरी। फिर मुझे देख करके कहता है कि यू लुक सो पीसफुल, हु आर यू? अच्छा है, मुझे तो संस्था का परिचय देने का टाइम मिल गया। उसने कभी ब्रह्मा कुमारी इसका नाम सुना ही नहीं था। फिर जब वापस लौटी 10 दिन के बाद, को इंसिडेंस वही ऑफिसर के पास मेरा जाना हुआ और उसने फिर मेरे से पूछा कि यू आर द सेम लेडी। फिर मुझे पूछने लगा मॉरिशस के बारे में, तो हमारा चेहरा सेवा करता है, अंदर में क्या चल रहा है वो संकल्प के आधार से हम अपने चेहरे को बनाए रखते हैं। मुझे कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि कितने भी बड़े संगठन में लोग जब देखते हैं तो यही कहते हैं कि आप कुछ अलग दिख रहे हैं। तो बाबा का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, बाबा ने हमें जो जीवन दी है वो जीवन इतनी श्रेष्ठ है, आप कहां भी रहते हो, कहां भी खड़े होते हो, चेहरे से सेवा कर सकते हैं। बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि हमारा चेहरा चलता फिरता म्यूजियम है, चाहे हमें वाणी से सेवा करने का अवसर मिले या न मिले, चेहरे से तो हम सेवा कर सकते हैं। कितने लोगों को हम अपनी पहचान दे सकते हैं। तो ये ज्ञान जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। आप सभी ने ये बात बहुत बारी सुनी होंगी इस भट्टी में भी कि कुमारी वज 21 कुल का उद्धार करें। हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या हम बाबा की भुजा बनना चाहते हैं या नहीं, वो मेरे हाथ में है। अगर इतनी सारी कुमारियां बाबा की भुजा बन गई तो क्या होगा? हाँ, सत्यु कल आ जाएगा, तैयार हो? हाँ, बाबा कई बार कहते हैं कि कलयुग की पहाड़ को उठाना है और एक कलयुगी पहाड़ को उठाने के लिए बाबा को किसकी आवश्यकता है? हाँ, हम कुमारियों की। एक एक अंगुली के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाया गया था, तो एक कलयुगी पहाड़ उठाने के लिए बाबा को हमारा एक पावरफुल पॉजिटिव संकल्प की जरूरत है। और वो संकल्प कौन सा है? मेरा परिवर्तन। जब मैं बदलूंगी तो विश्व बदल जाएगा। कर सकते हैं ना ये तो, हाँ, चाहे कहां भी रहे, लेकिन मेरा परिवर्तन यदि संसार को बदल सकता है तो मुझे बदलने में क्या आपत्ति है? तो हम आज ये कोई श्रेष्ठ संकल्प करें कि हम बाबा को अपना परिवर्तन करके दिखाएं, और ऐसा परिवर्तन जो मुझे देख करके अनेकों को प्रेरणा मिले, आपके फ्रेंड सर्कल को प्रेरणा मिले, आपके आसपास के लोगों को प्रेरणा मिले, और हमारा एक का परिवर्तन, जैसे कहने में क्या आता है कि एक दीपक जगता है तो एक दीपक से अनेक दीपक जगाए जाते हैं। अगर मैं एक दीपक बन करके रहूं, जगा हुआ दीपक, बुझाया हुआ नहीं, बुझाए हुए दीपक की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जगा हुआ दीपक की वैल्यू होती है। और एक दीपक से अनेक दीपक जगाए जाते हैं, जैसे एक बीज से अनेक बीज, अनेक वृक्ष उगाए जाते हैं। मेरी भी उतनी ही वैल्यू है इस संसार में कि मैं एक परिवर्तन होने का संकल्प यदि लेती हूं तो मेरे एक के संकल्प से संसार में महान क्रांति आ सकती है। जैसे ब्रह्मा बाबा, एक को शिव बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन एक ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे परिवर्तन से विश्व बदलेगा क्या। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि एक बीज से अनेक बीज उत्पन्न किए हैं बाबा ने, एक दीपक से अनेक दीपकों को जगाया है बाबा ने। तो मैं भी ऐसा कोई श्रेष्ठ संकल्प करूं अपने जीवन में ताकि मेरा जीवन श्रेष्ठ बने। तो हम यही कहेंगे कि कुमारी जीवन वरदानी जीवन है, और ये वरदानी जीवन को हम वरदान के रूप में यूज करें, हमारे ऊपर किसी की भी नजर न जाए, क्योंकि भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी है। तो हमारा खुशनुमा फ्यूचर तब बन सकता है जब वर्तमान को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो यही मेरी आप सभी से शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप सभी अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाएं, इतना ऊंचा उठाएं कि विश्व परिवर्तन होके ही रहे। ओम शांति।